नमस्ते, मेरा नाम नवनीत है और मैं इंड साइकॉम का एक सदस्य हूँ। इंड साइकॉम विज्ञान के संचार के लिए गठित एक समूह है और इंड साइकॉम के जरिए हम भारतीय मूल के हर स्तर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और लेखकों के साथ जुड़कर विज्ञान के संचार के लिए काम करते हैं। ये हमारी एक कोशिश है जिसके जरिए हम विज्ञान के अनेक पहलुओं पर आम जनता से संवाद कर सकें। विज्ञान जगत में आए दिन नए खोज और आविष्कार होते रहते हैं जो हमारे समाज को अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। हम इन आविष्कारों से आपका परिचय कराना चाहते हैं और हमारा निरंतर प्रयास यह भी रहता है कि हम इन खोजों और आविष्कारों के पीछे छुपे वैज्ञानिकों और उनकी कड़ी मेहनत पर भी रोशनी डालें जो कि आम तौर पर समाज से छिपी रह जाती है। ऐसे कुछ दिलचस्प विषयों पर हमने पॉडकास्ट भी बनाए हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट indsaicom.blog पर सुन सकते हैं। हमें इस पॉडकास्ट कार्यक्रम को हिंदी में पेश करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जो हमारे देश की अधिकृत भाषाओं में से एक
है। नमस्ते, मेरा नाम दीपिका है। मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक हूँ। यहाँ मैं मस्तिष्क के उन भागों का अध्ययन करती हूँ जो आवेगशीलता यानी कि इम्पल्सिविटी पर नियंत्रण रखते हैं। मुझे इस पॉडकास्ट में भाग लेते हुए बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम के इस भाग में हम उन जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे जो जीव विज्ञान के प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम के अगले भाग में हम खास रूप से विज्ञान में चूहों पर होने वाले प्रयोगों पर एक नजर डालेंगे। परंतु उससे पहले विज्ञान में उपयोग होने वाले बाकी जीव जंतुओं की भी चर्चा कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे जीव, सिरका मक्खियां, पक्षी जैसे कि ज़ेब्रा फिंच, चूहे, गिनी पिग, छीना जिसे हम आम भाषा में सुअर भी कहते हैं, और बंदर ऐसे कुछ जीवों के उदाहरण हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण विकास, शरीर की कार्य पद्धति अर्थात फंक्शनिंग और शरीर में होने वाली कई बीमारियों का अध्ययन करते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को प्रतिमान जंतु यानी मॉडल ऑर्गेनिजम्स भी कहा जा सकता है।
सामान्य तौर पर कई प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किए जा सकते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक अन्य जीव जंतुओं का उपयोग करते हैं। परंतु ऐसे जीवों को चुनने से पहले प्रयोग के लक्ष्यों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर शारीरिक क्रिया अथवा फिजियोलॉजी के प्रयोगों के उपयोग में होने वाले प्रतिमान जंतुओं की क्रियाएं मनुष्यों के समान होनी चाहिए। इसी तरह अनुवंशिकी अथवा जेनेटिक्स पर आधारित प्रयोगों में यह अनिवार्य है कि उन जीवों और मनुष्यों के डीएनए में ज्यादा से ज्यादा मेल रहे। जीन्स या वंशाणु और शारीरिक क्रिया की समानता के अलावा और भी कारण हैं जिनकी वजह से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विशेष जीवों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ कारण हैं जैसे कि इन जीवों को आसानी से पाला जा सकता है, उनका जीवन काल ज्यादातर छोटा रहता है और उन्हें विशेष प्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। दीपिका, क्या आप हमें कुछ ऐसे जीवों का उदाहरण दे सकती हैं जिनका विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग होता हो?
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कुछ विशेष जीवों का प्रयोग विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में होता है, जैसे केचुओं यानी अर्थवर्म्स और अन्य कीड़ों में अंगों के पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। इसीलिए वैज्ञानिक शरीर के अंगों के पुनर्निर्माण का अध्ययन इन पे करते हैं। सिरका मक्खियों पे वंशाणु और वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अर्थात भ्रूण विकास का अनुसंधान हम ज़ेब्रा मछली में करते हैं। ज़ेब्रा मछली के नवजात शिशुओं का शरीर पूरी तरह से पारदर्शक होता है जिसकी वजह से उनके शरीर के अंगों का विकास का अध्ययन किया जा सकता है। स्तनधारी जानवर जिन्हें अंग्रेजी में मैमल्स कहा जाता है में चूहों का इस्तेमाल जीव चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि उनका शारीरिक क्रियाएं मनुष्यों के समान होती हैं।
जीव चिकित्सा में चूहों का प्रयोग करने से क्या लाभ है?
साधारण तौर पे कर्क रोग, मधुमेह और मानसिक रोग जैसी कई बीमारियों के लक्षण मनुष्यों में सालों बाद ही दिखाई देते हैं, पर चूहों समेत कुछ जानवरों में इन बीमारियों के लक्षण कुछ ही हफ्तों या महीनों में देखे जा सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक चूहों जैसे जानवरों का प्रयोग मनुष्यों में होने वाली बीमारियों और उनके इलाज के अध्ययन में करते हैं।
परंतु विज्ञान में जीवों के प्रयोग करने के कुछ नुकसान भी हैं। मनुष्यों और जानवरों के वंशाणुओं के बीच में गहरी समानता होने के बावजूद कुछ मुख्य अंतर भी हैं। इन असमानताओं की वजह से जीवों में पाए गए वैज्ञानिक परिणाम या तो दूसरे जानवरों और मनुष्यों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं या दोहराए नहीं जा पाते हैं।
इसके अलावा आमतौर पर जीवों का शरीर और जीवन काल अलग होने की वजह से उनपे किए गए उपयोग की प्रणालियों में भी अंतर होता है। इसी वजह से एक जीव पे किए गए प्रयोगों को बिना बदले दूसरे जीवों पर कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए जीवों के उपयोग के बावजूद नई दवाइयों को वैज्ञानिक मान्यता मिलने से पहले और मानव चिकित्सा में उनके प्रयोग होने से पहले उनका मनुष्यों पर पुष्टिकरण जरूरी है। मनुष्यों और जीव जंतुओं के बीच में असमानताओं के बावजूद हमें कुछ मौलिक समानताएं हैं और इन समानताओं की वजह से ही हम इन जीवों में पाए गए परिणामों को मनुष्यों पर लागू कर सकते हैं। पर जीवों का नैतिक रूप से उपयोग भी जरूरी होता है।
वैज्ञानिक अनुसंधान में दो मुद्दों के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है, एक कि क्या जरूरी है और दूसरा कि क्या संभव है। ये संघर्ष जीव विज्ञान में नैतिकता का रूप ले लेता है, क्योंकि अन्य जीव भी मनुष्यों की तरह दर्द और पीड़ा महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जीवों को अनावश्यक तकलीफ पहुंचाना हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके लिए वैज्ञानिकों और समाज ने मिलकर कई नियम और कानून लागू किए हैं ताकि वे प्रयोगों में उपयोग होने वाले जीवों का इस्तेमाल नैतिकता से कर सके। इनमें से कुछ नियम हैं, जैसे कि प्रयोगों के दौरान इस्तेमाल होने वाले जानवरों पर पीड़ा घटाने वाली दवाइयों का प्रयोग करना और उन्हें आरामदायक वातावरण में पालना। इसके अलावा जीवों को नियंत्रित संख्या और जिम्मेदारी से भी उपयोग करना जरूरी है।
एक वैज्ञानिक का काम बहुत सारी चुनौतियों से भरा है, फिर चाहे वो जीवों का नैतिक उपयोग का हो या जीव विज्ञान के पेचीदा प्रश्नों का हल ढूंढना। पर विज्ञान में प्रयोग होने वाले जीवों का योगदान ना होता तो वैज्ञानिकों का कार्य और भी कठिन होता। इन जीवों का मानव समाज और औषधि विज्ञान की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है।
पेनिसिलिन जैसे जीवाणुनाशक यानी कि एंटीबायोटिक्स की खोज, रक्तदान, अंगों का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट, पोलियो तथा अन्य बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, मधुमेह जैसे रोगों की रोकथाम, और ये सूची इतनी लंबी है कि अगर हम पूरी सुनाने लगे तो ये पॉडकास्ट कभी खत्म ही ना हो। इन खोजों की बदौलत अनगिनत लोगों की जानें बचाई गई हैं।
प्रतिमान जीव मानव शरीर के रहस्य और स्वास्थ्य को समझने का एक आवश्यक साधन है। इन जीवों पर किए गए प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने कई दवाइयों और उपचारों का खोज किया है। ऐसी दवाइयों की मदद से डॉक्टरों ने कई बीमारियों का उपचार किया है। अब वैज्ञानिक शारीरिक विकास, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और मस्तिष्क की क्रियाओं को गहराई से समझने में जुटे हैं। इससे कर्क रोग, हृदय रोग और मानसिक रोग जैसी जटिल समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
इस प्रोग्राम के अगले भाग में हम विज्ञान में चूहों पर किए गए प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे अन्य प्रयासों का आनंद हमारे वेबसाइट insicom.blog यानी कि insicom.blog और हमारे ट्विटर हैंडल @insicom पे ले सकते हैं। तब तक इंसाइकॉम की तरफ से
मैं हूं दीपिका
और मैं नवनीत। नमस्कार।